एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और शायद थोड़ा सा पेचीदा विषय पर बात करने वाले हैं, अमेरिका में धर्म।
हाँ, और इस सफर में हमारे गाइड होंगे विद्वान टिमोथी बियल। हम उनके काम, खासतौर पर उनकी किताबें रिलीजन इन अमेरिका और रिलीजन इन अमेरिका अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के सारांशों पर बात करेंगे। यही हमारे आज के स्रोत हैं।
बिल्कुल। और ये विषय सिर्फ अकादमिक नहीं है, है ना? मतलब आज की दुनिया को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है।
सही कहा। अमेरिका में धर्म का जो रूप है उसका असर सिर्फ वहाँ की राजनीति या समाज पर ही नहीं पड़ता।
हाँ बिल्कुल।
बल्कि दुनिया भर में अमेरिका की जो छवि है उसका जो प्रभाव है उसको भी ये आकार देता है।
और अक्सर हम इस बारे में मतलब सुनी सुनाई बातों पर या कुछ बनी बनाई धारणाओं पर यकीन कर लेते हैं,
और यहीं पर टिमोथी बील का काम अहम हो जाता है।
हाँ,
वो हमें इन आम मिथकों और जो चीजें सरल करके बता दी जाती हैं उनसे परे ले जाते हैं अमेरिकी धार्मिक जीवन की एक ज्यादा जटिल, ज्यादा बारीक और शायद ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं।
हाँ, एक तरह से अमेरिकी समाज के अंदर क्या चल रहा है उसे समझने जैसा है ये।
तो चलिए पहले टिमोथी बील को थोड़ा जान लेते हैं। कौन है ये और इनका नजरिया इतना खास क्यों माना जाता है?
टिमोथी बेल केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में धर्म के फ्लोरेंस हार्कनेस प्रोफेसर हैं। उनकी अकादमिक पकड़ तो काफी मजबूत है, खासकर बाइबल के सांस्कृतिक और साहित्यिक अध्ययन में।
अच्छा।
पर उनकी विशेषज्ञता सिर्फ वहीं तक नहीं है, वो अमेरिका में धर्म का जो पूरा नजारा है उस पर गहरी नजर रखते हैं।
और जो बात उनके काम को खास बनाती है वो है उनका लिखने का अंदाज, है ना?
बिल्कुल। वो गंभीर अकादमिक रिसर्च को बहुत ही सरल, मतलब आसानी से पढ़ी जाने वाली भाषा में पेश करते हैं।
हाँ, क्योंकि धर्म जैसे विषय अक्सर भारी भरकम शब्दों में खो जाते हैं।
सही कहा, लेकिन बील इसे आम पाठक के लिए भी समझने लायक बनाते हैं।
और एक और जरूरी बात शायद ये है कि वो किसी एक तरफ नहीं है, मतलब न वो किसी धर्म के प्रचारक हैं ना ही उसके विरोधी।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक निष्पक्ष सावधान ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। उनकी दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है कि ये धार्मिक विचार, ये कहानियां, ये प्रथाएं समाज में काम कैसे करते हैं।
वो ये पूछते हैं कि ये धार्मिक कहानियां बनती कैसे हैं, इनकी मार्केटिंग कैसे होती है, लोग इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल। यानी वो धर्म को एक सामाजिक और सांस्कृतिक घटना या फिनोमिनन के तौर पर देखते हैं। उनका लक्ष्य, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, सिर्फ जानकारी देना नहीं है,
बल्कि
धार्मिक साक्षरता यानी रिलीजियस लिटरेसी को बढ़ावा देना है। वो चाहते हैं कि लोग सतही खबरों और बहसों से आगे बढ़कर अमेरिकी धार्मिक जीवन का जो असली ताना बाना है उसे समझें।
और ये धार्मिक साक्षरता आज कितनी जरूरी है जब धर्म अक्सर राजनीतिक और सामाजिक बहसों के बिल्कुल केंद्र में होता है।
बिल्कुल। बील का काम हमें इन बहसों को बेहतर ढंग से समझने का एक फ्रेमवर्क देता है, एक नजरिया देता है।
तो अब आते हैं उनकी किताबों के मुख्य विचारों पर। बील असल में बताना क्या चाह रहे हैं? उनका सबसे बड़ा काम है उन पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देना जो अमेरिका में धर्म को लेकर फैली हुई हैं।
हाँ, और सबसे पहली धारणा जिसे वो तोड़ते हैं वो है ईसाई राष्ट्र वाली बात, मतलब क्रिश्चियन नेशन का मिथक।
हाँ, ये तो बहुत सुना जाता है कि अमेरिका की नींव एक ईसाई देश के तौर पर रखी गई थी।
पर बील कहते हैं ये ऐतिहासिक रूप से, मतलब फैक्चुअली, सही नहीं है।
अच्छा, कैसे?
वो बताते हैं कि शुरुआती यूरोपीय उपनिवेशक, जैसे मान लीजिए प्यूरिटन्स, वो अपने खास तरह के प्रोटेस्टेंटवाद के लिए धार्मिक आजादी चाहते थे, सबके लिए नहीं।
मतलब सिर्फ अपने समूह के लिए?
हाँ बिल्कुल। शुरू से ही वहां विविधता थी। एंग्लिकन थे, क्वेकर थे, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, यहूदी, ये सब शुरू में ही मौजूद थे।
और इनके अलावा?
इनके अलावा मूल अमेरिकी लोगों की अपनी गहरी आध्यात्मिक परंपराएं थीं, और अफ्रीका से जो गुलाम बनाकर लोग लाए गए थे उनकी भी अपनी आस्थाएं थीं। तो विविधता शुरू से ही थी, एक रूपता कभी थी ही नहीं।
ये तो काफी अलग तस्वीर है उस आम धारणा से।
बिल्कुल। और दूसरी बड़ी धारणा जिसे बील चुनौती देते हैं वो ये है कि अमेरिका में धर्म लगातार कमजोर हो रहा है या खत्म हो रहा है।
अच्छा, ये भी तो काफी लोग मानते हैं।
हाँ, पर बील मानते हैं कि पारंपरिक संस्थागत धर्म का असर शायद बदल रहा हो, लेकिन अमेरिकी समाज में आध्यात्मिक खोज और धार्मिक नवाचार की एक जबरदस्त जिंदादिली बनी हुई है।
और इसी जिंदादिली को समझाने के लिए वो अपना सबसे मशहूर रूपक या मेटाफोर इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक बाजार का।
हाँ, रिलीजियस मार्केट प्लेस।
हाँ, ये उनके विश्लेषण का बिल्कुल केंद्र बिंदु है।
ये क्या है धार्मिक बाजार, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर ये बहुत दिलचस्प विचार है। बील का तर्क है कि क्योंकि अमेरिका में कोई स्थापित राजकीय धर्म नहीं है, मतलब सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती, इसलिए धार्मिक समूहों को अनुयायियों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करना पड़ता है।
अच्छा, जैसे बाजार में कंपनियां ग्राहकों के लिए होड़ करती हैं?
बिल्कुल वैसा ही। तो इस नजरिए से धर्म कोई स्थिर विरासत में मिली चीज नहीं रह जाता,
बल्कि
एक गतिशील कल्चरल प्रोडक्ट बन जाता है। अनुयायी एक तरह से उपभोक्ता बन जाते हैं जिनके पास चुनने के लिए कई ऑप्शन होते हैं।
और धार्मिक समूहों को ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं, इनोवेशन करना पड़ता है।
हाँ, ये अमेरिकी धर्म को पूंजीवाद, लोकतंत्र, आप्रवासन और व्यक्तिगत पसंद जैसी ताकतों से प्रभावित एक लगातार बदलते हुए सांस्कृतिक नजारे के रूप में दिखाता है।
ये तो धर्म को देखने का बिल्कुल अलग तरीका है, मतलब संस्थाओं और सिद्धांतों से ज्यादा प्रक्रियाओं और गतिशीलता पर ध्यान देना।
सही कहा, उनका उद्देश्य साफ है। आम पाठकों से लेकर पॉलिसी बनाने वालों तक सभी को इस जटिल धार्मिक परिदृश्य को समझने के लिए एक बेहतर लेंस देना। वो किसी एक धर्म की कहानी नहीं कहते, बल्कि कुछ खास थीम्स के जरिए अमेरिकी धार्मिक अनुभव की पड़ते खोलते हैं।
तो चलिए अब इन थीम्स में और गहराई से उतरते हैं। पहला थीम तो हमने छुआ मिथक बनाम वास्तविकता, यानी शुरुआती विविधता का। बील इस ईसाई राष्ट्र की कहानी को और कैसे तोड़ते हैं?
वो ऐतिहासिक तथ्यों से दिखाते हैं कि शुरुआती दौर में ही धार्मिक समूहों के बीच काफी तनाव था, मुकाबला था। प्यूरिटन अपने जैसे प्रोटेस्टेंट तो चाहते थे, पर मान लीजिए क्वैकरों या बैप्टिस्टों को बर्दाश्त नहीं करते थे।
अच्छा।
कैथलिक और यहूदियों को तो अक्सर शक की निगाह से देखा जाता था। तो सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता वाला आइडिया धीरे धीरे विकसित हुआ, ये कोई शुरुआती बिंदु नहीं था।
तो असलियत थी विविधता और संघर्ष।
हाँ बिल्कुल, और इसी संघर्ष और राजकीय मदद की कमी ने उस धार्मिक बाजार को सक्रिय कर दिया। जब सरकार का सहारा नहीं था तो समूहों को खुद ही मैदान में उतरना पड़ा।
इसके नतीजे क्या हुए?
इसने जबरदस्त धार्मिक उद्यमिता को जन्म दिया, रिलीजियस एंटरप्रेन्योरशिप। सोचिए 18वीं सदी के जॉर्ज व्हाइटफील्ड जैसे प्रचारकों के बारे में।
हाँ, सुना उनके बारे में।
उन्होंने बड़े पैमाने पर धार्मिक सभाएं की, इमोशनल अपील का इस्तेमाल किया, प्रिंट मीडिया का सहारा लिया। ये सब एक तरह की मार्केटिंग तकनीकें थीं अनुयायियों को जोड़ने की। चर्चों को सक्रिय रूप से कस्टमर ढूंढने पड़े।
और इसी मुकाबले ने इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया होगा।
बिल्कुल, जब पुराने तरीके काम नहीं करते या जब समाज बदलता है तो नए धार्मिक विचार और आंदोलन उभरते हैं। मोमनवाद, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, ये कुछ उदाहरण हैं उन नए धार्मिक आंदोलनों के जो अमेरिकी जमीन पर पनपे। ये दिखाता है कि अमेरिकी धर्म सिर्फ पुरानी परंपराओं को सहेजने वाला नहीं है, बल्कि लगातार नई चीजें गढ़ने वाला भी है।
लेकिन क्या ये बाजार हमेशा सबके लिए बराबर का खेल रहा है? मतलब क्या सबको एक जैसे मौके मिले? बील इस पर भी कुछ कहते हैं।
हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बील बताते हैं कि भले ही फॉर्मली कोई राजकीय धर्म न रहा हो, लेकिन अनौपचारिक रूप से एक प्रोटेस्टेंट प्रतिष्ठान ने, मतलब प्रोटेस्टेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, लंबे समय तक अमेरिकी संस्कृति, कानूनों और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया है।
अच्छा, इसे वो प्रोटेस्टेंट विशेषाधिकार कहते हैं, प्रोटेस्टेंट प्रिविलेज।
हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटेस्टेंट मान्यताओं और मूल्यों को नॉर्मल या डिफॉल्ट माना जाता था।
और जो इस दायरे से बाहर थे,
जैसे कैथलिक, यहूदी और बाद में आए दूसरे धर्मों के लोग, उन्हें अक्सर बाहरी या अदर समझा गया। उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, भेदभाव झेलना पड़ा।
तो बाजार खुला तो था, पर खेलने का मैदान बराबर नहीं था।
बिल्कुल, और इस स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया 1965 के आप्रवासन अधिनियम के बाद। इस कानून ने अमेरिका के दरवाजे एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए ज्यादा खोल दिए।
हाँ, उसका असर तो बहुत गहरा हुआ होगा।
बहुत। इसके साथ ही इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म जैसी अनेक नई धार्मिक परंपराएं बड़े पैमाने पर अमेरिका पहुंची। इसने अमेरिका के धार्मिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया और उस पुराने प्रोटेस्टेंट प्रभुत्व को और ज्यादा चुनौती दी।
ये दिखाता है कि ये बाजार कितना डायनामिक है और बाहरी ताकतें इसे कैसे बदल सकती हैं।
सही। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण विषय पर, धर्म का नस्ल और जातीयता के साथ गहरा और जटिल रिश्ता। बील कहते हैं कि अमेरिका में धर्म को इन दोनों से अलग करके समझा ही नहीं जा सकता।
ये बात तो शायद हर समाज के लिए कुछ हद तक सच है, पर अमेरिका में शायद और भी ज्यादा।
हाँ बिल्कुल, खास तौर पर जो समुदाय हाशे पर रहे हैं उनके लिए धर्म एक दोधारी तलवार जैसा रहा है। एक तरफ धर्म का इस्तेमाल उनके दमन को, उनके शोषण को जायज ठहराने के लिए किया गया।
जैसे
सोचिए कैसे बाइबल की कुछ व्याख्याओं का इस्तेमाल गुलामी को सही ठहराने और श्वेत वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किया गया था।
ये तो बहुत भयानक है।
लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं उत्पीड़ित समुदायों के लिए धर्म उनके अस्तित्व, उनकी पहचान और उनकी आज़ादी की लड़ाई का सबसे शक्तिशाली हथियार भी बना।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद ब्लैक चर्च है।
बिल्कुल, अफ्रीकी अमेरिकी चर्च। गुलामी की भयानक परिस्थितियों में जन्मे ये चर्च अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के लिए सिर्फ पूजा स्थल नहीं रहे।
वो और क्या थे?
वो सामाजिक संगठन का केंद्र बने, राजनीतिक सक्रियता का मंच बने, सांस्कृतिक संरक्षण का जरिया बने और सबसे बढ़कर उम्मीद और ताकत का स्रोत बने।
नागरिक अधिकार आंदोलन को ही देख लीजिए।
हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने बाइबल की कहानियों, खासकर एक्सोडस की कहानी जिसमें इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से आज़ाद होते हैं, उसका इस्तेमाल लोगों को प्रेरित करने और नस्लीय न्याय के संघर्ष को नैतिक बल देने के लिए किया।
ये दिखाता है कि एक ही धार्मिक स्रोत का इस्तेमाल कितने अलग अलग मकसदों के लिए हो सकता है।
बिल्कुल, इसी तरह मूल अमेरिकी लोगों की आध्यात्मिक परंपराओं को सिस्टमैटिक तरीके से दबाया गया, उन्हें असभ्य कहकर खारिज करने की कोशिश की गई।
और अप्रवासी समुदायों के लिए?
उनके लिए उनका धर्म अक्सर नई दुनिया में अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया रहा है, चाहे वो आयरिश कैथोलिक हों, इतालवी कैथोलिक हों, पूर्वी यूरोपीय यहूदी हों या हाल के एशियाई अप्रवासी हों।
ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि धर्म का अनुभव नस्ल, जातीयता और पावर डायनामिक से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये बाजार सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि शक्ति और पहचान का भी है।
बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ते हैं धर्म का, शरीर, लिंग और राजनीति से संबंध। अमेरिकी धार्मिक परंपराएं हमेशा से इस बात में गहरी रुचि लेती रही हैं कि शरीर को कैसे नियंत्रित किया जाए, लैंगिक भूमिकाएं क्या हों और यौन नैतिकता कैसी हो।
हाँ, और इन धार्मिक विश्वासों का असर सिर्फ लोगों के निजी जीवन तक ही नहीं रहता।
नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका सीधा प्रभाव पब्लिक पॉलिसी और कानूनों पर पड़ा है। इतिहास में देखें तो शराबबंदी का आंदोलन काफी हद तक प्रोटेस्टेंट नैतिकतावादियों ने चलाया था।
और आज के संस्कृति युद्ध, कल्चर वॉर्स।
हाँ, गर्भपात के अधिकार, LGBTQ+ अधिकार, स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए, इन सब बहसों के मूल में अक्सर गहरे धार्मिक मतभेद होते हैं।
तो ये दिखाता है कि अमेरिका में धर्म और राजनीति का अलगाव उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं।
हाँ बिल्कुल, निजी धार्मिक विश्वास अक्सर सार्वजनिक और राजनीतिक संघर्षों का ईंधन बनते हैं, साथ ही बील धार्मिक परंपराओं के अंदर मौजूद पितृसत्तात्मक संरचनाओं पर भी ध्यान दिलाते हैं।
और उनके खिलाफ जो आंदोलन हुए?
हाँ, जैसे नारीवादी धर्मशास्त्र, फेमिनिस्ट थियोलॉजी और लैंगिक समानता के आंदोलन, यानी धर्म के अंदर भी सत्ता, व्याख्या और अधिकारों को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहता है।
और अंत में बील हमें संस्थाओं से परे देखने के लिए कहते हैं, वो जीवित धर्म यानी लिव्ड रिलीजन की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि धर्म सिर्फ इमारतों, चर्च, मंदिर, मस्जिद या ग्रंथों या आधिकारिक सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं है।
तो फिर क्या है?
धर्म वो भी है जो आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, महसूस करते हैं और जिस तरह से वो अपनी आस्था को जीते हैं। अक्सर लोग अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक स्रोतों से चीजें लेकर अपना एक अनूठा पर्सनल रास्ता बना लेते हैं।
अच्छा, जैसे आजकल वो स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस वाली बात बहुत होती है, SBNR।
हाँ बिल्कुल, हिंदी में कह सकते हैं आध्यात्मिक हूँ पर किसी पंथ से नहीं जुड़ा जुड़ी। ये लोग संगठित धर्मों से शायद दूरी रखते हो लेकिन उनमें जीवन के गहरे सवालों, अर्थ और जुड़ाव की तलाश बनी रहती है।
या फिर वो समाजशास्त्री रॉबर्ट बेला का उदाहरण, शीलावाद।
हाँ, वो बहुत मशहूर है। एक महिला का जिक्र था जिसने अपने निजी विश्वासों के सिस्टम को अपना ही नाम दे दिया था, शीलावाद। ये अमरीकी व्यक्तिवाद का एक चरम उदाहरण है जहाँ धर्म पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद और निर्माण का विषय बन जाता है।
और ये जीवित धर्म अक्सर पॉपुलर कल्चर और उपभोक्तावाद के साथ घुल मिल जाता है।
हाँ बिल्कुल, सोचिए ईसाई रॉक कॉन्सर्ट्स, योग और मेडिटेशन ऐप्स, सेल्फ हेल्प गुरु, वेलनेस इंडस्ट्री, ये सब उस बड़े आध्यात्मिक बाजार का हिस्सा हैं जहां आस्था और आध्यात्मिकता को अक्सर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रूप में पेश किया जाता है।
और इसी संदर्भ में बील उन लोगों की बात करते हैं जो खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ते, जिन्हें नोन्स कहा जाता है।
हाँ, ये अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ समूह है। बील का तर्क है कि ये जरूरी नहीं कि ये सब लोग नास्तिक हों।
तो फिर क्या?
कई मामलों में ये संस्थानों से मोहभंग का संकेत है और धर्म के ज्यादा व्यक्तिगत निजी रूपों की ओर रुझान दिखाता है। ये अमेरिकी धर्म के लगातार बदलते और अनुकूलित होते रहने का एक और सबूत है।
तो अगर हम बील के पूरे विश्लेषण को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश या सूत्र क्या निकलते हैं?
पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी संदेश, विविधता अमेरिका की मूल स्थिति है, कोई बाद में आई चीज नहीं। ईसाई राष्ट्र की कहानी एक मिथक है जिसे समझना जरूरी है।
ये बात सोचते हुए मुझे भारत की अपनी गहरी और प्राचीन धार्मिक विविधता का ध्यान आता है। क्या ये हमारे लिए भी एक सबक है कि विविधता को एक ताकत के रूप में देखें, न कि एक समस्या के रूप में?
बिल्कुल। दूसरा मुख्य संदेश है अमेरिकी धर्म का नवाचार और अनुकूलन का चरित्र। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती नदी की तरह है जो लगातार अपना रास्ता बदलती है, नई परिस्थितियों के हिसाब से ढलती है। इसमें जबरदस्त लचीलापन और रचनात्मकता है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत में भी सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं आज के आधुनिक जीवन, तकनीक और सामाजिक बदलावों के साथ कैसे तालमेल बिठा रही हैं, कैसी नए रूप ले रही हैं।
तीसरा संदेश है अमेरिकी धर्म का लोकतांत्रिक या कहें व्यक्तिवादी चरित्र। यहाँ अक्सर संस्थागत अधिकार या परंपरा से ज्यादा व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत पसंद और व्यक्तिगत व्याख्या को महत्व दिया जाता है।
यही वजह है कि वहाँ नए गुरु, नए आंदोलन इतनी तेजी से उभरते और फैलते हैं।
हाँ,
क्या हम भारत में भी पारंपरिक धार्मिक संरचनाओं के बाहर व्यक्तिगत गुरुओं और नए आध्यात्मिक आंदोलनों के प्रति बढ़ते आकर्षण में ऐसी ही प्रवृत्ति देखते हैं?
चौथा, कहानी धर्म के खत्म होने की नहीं बल्कि उसकी निरंतर खोज और पुनर्खोज की है। यहाँ तक कि जो लोग किसी स्थापित धर्म से नहीं जुड़े हैं, नोन्स, वो भी अक्सर जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश में लगे रहते हैं, बस उनके रास्ते अलग होते हैं।
हाँ, ये आध्यात्मिक प्यास बनी रहती है। ये शायद शहरी भारत में दिख रहे रुझानों से मिलता जुलता है, जहाँ कई लोग संगठित धर्म की सीमाओं से बाहर जाकर आध्यात्मिकता और वेलनेस की तलाश कर रहे हैं।
और पांचवा संदेश,
धर्म सिर्फ निजी विश्वास का मामला नहीं है बल्कि ये एक शक्तिशाली सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति रहा है और है। इसने अमेरिका में संगीत, कला, साहित्य, सामाजिक आंदोलनों और सामुदायिक जीवन को गहराई से आकार दिया है। ये सिर्फ प्रतिबंध लगाने वाली शक्ति नहीं बल्कि रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत भी है। इसकी सीधी समानता आप तो भारत की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में धर्म के गहरे और बहुआयामी योगदान में देखी जा सकती है।
बिल्कुल।
बील के काम की खूबी ये भी है कि वो इन जटिल विचारों को कुछ यादगार सूत्रों में पिरो देते हैं। ये सिर्फ अकादमिक निष्कर्ष नहीं बल्कि ऐसे विचार हैं जो हमें अमेरिकी धर्म को एक नए नजरिए से देखने में मदद करते हैं।
हाँ, चलिए कुछ ऐसे मुख्य विचारों पर बात करते हैं जो उनके विश्लेषण का सार है। पहला विचार, अमेरिकी धर्म का मतलब है रचनात्मक अनुकूलन और नवाचार, न कि सिर्फ परंपरा का संरक्षण।
हाँ, ये उसकी गतिशीलता पर जोर देता है। ये ठहरा हुआ पानी नहीं, बहता हुआ दरिया है।
दूसरा विचार, विविधता अमेरिकी धर्म के लिए कोई खतरा नहीं बल्कि उसकी मूल पहचान और जीवन शक्ति का स्रोत है।
ये बहुलवाद को सकारात्मक रूप में देखता है, न कि एक समस्या के तौर पर।
ये उन आवाजों को चुनौती देता है जो धार्मिक एकरूपता की मांग करती हैं।
तीसरा, अमेरिकियों ने धर्म का लोकतंत्रीकरण किया है, संस्थागत अधिकार पर व्यक्तिगत अनुभव को प्राथमिकता दी है।
ये उस गहरे व्यक्तिवाद को रेखांकित करता है जो अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा है और धर्म में भी झलकता है। आपकी आस्था आपकी निजी पसंद और अनुभव का विषय है।
चौथा, कहानी धर्म के पतन की नहीं बल्कि निरंतर आध्यात्मिक खोज और पुनर्खोज की है।
हाँ, ये निराशावादी नैरेटिव को खारिज करता है। लोग धर्म को छोड़ नहीं रहे बल्कि उसे नए तरीकों से खोज रहे हैं, जी रहे हैं।
और पांचवा, जो शायद सबसे केंद्रीय रूपक है, अमेरिका एक अखंड ईसाई राष्ट्र नहीं बल्कि एक हलचल भरा धार्मिक बाजार है।
हाँ, इस बाजार वाले नजरिए के मायने क्या हैं? ये दिखाता है कि धर्म भी प्रतिस्पर्धा, मार्केटिंग, उपभोक्तावाद जैसी ताकतों से अछूता नहीं है।
इसके फायदे भी हैं।
बिल्कुल, जैसे नवाचार और विकल्प, लेकिन नुकसान भी है, जैसे धर्म का वस्तुकरण हो जाना या सतही हो जाना।
तो ये सब समझना हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या दुनिया को देखने के नजरिए से क्या लेना देना है?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इससे हमारी राजनैतिक और सामाजिक समझ बेहतर होती है। जब हम अमेरिका या कहीं और भी संस्कृति युद्ध या धार्मिक मुद्दों पर आधारित बहसें देखते या सुनते हैं, तो हम उन्हें ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। हम पहचान सकते हैं कि कौन से तर्क ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं, कौन से मिथकों पर, और कैसे धार्मिक बाजार की गतिशीलता इन बहसों को प्रभावित कर रही है।
दूसरी बात, ये अंतरधार्मिक समाज और संवाद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
कैसे?
अगर हम ये मान लें कि अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक रास्ते उस बड़े बाजार का हिस्सा हैं और लोग अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से चुन रहे हैं, तो शायद हम दूसरों के विश्वासों के प्रति ज्यादा सम्मान और सहानुभूति रख पाएंगे, भले ही हम उनसे सहमत ना हों।
हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। और हाँ, ये हमें एक ज्यादा जागरूक उपभोक्ता भी बनाता है ना, न सिर्फ बाजार में सामान खरीदते वक्त, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों और उत्पादों के मामले में भी।
हम सवाल पूछ सकते हैं कि हमें क्या बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है, और क्या ये वाकई हमारी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करता है।
बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पर भी ये सोचने को प्रेरित करता है। मेरी अपनी मान्यताएं, चाहे वो धार्मिक हों, आध्यात्मिक हों या धर्मनिरपेक्ष हों, वो किस हद तक मेरी संस्कृति, मेरे समाज, मेरे आसपास के बाजार से प्रभावित हैं?
क्या मैं अपनी मान्यताओं को लेकर उतना ही स्वतंत्र हूँ जितना मैं सोचता हूँ?
हाँ, ये सवाल उठता है। और अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में हैं, तो ये समझ हमें एक विविधतापूर्ण समाज में ज्यादा संवेदनशील और प्रभावी ढंग से काम करने में मदद कर सकती है।
अगर आपको इस पूरी चर्चा से एक सबसे अहम बात निकालनी हो तो वो क्या होगी?
मेरे लिए शायद वो होगी अमेरिकी आस्था की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता और उसका बाजार आधारित चरित्र। ये कैसे लगातार बदलता है, नए रूप लेता है, चुनौतियों का सामना करता है और फिर भी बना रहता है। ये धार्मिक बाजार का रूपक वाकई में अमेरिकी धर्म की जटिलता और जिंदादिली को पकड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा असरदार रही, वह है ऐतिहासिक विविधता की सच्चाई को समझना। ये जानना कि अमेरिका कभी भी एक अखंड ईसाई राष्ट्र नहीं था, बल्कि शुरुआत से ही बहुलतावादी था। ये सोच कई मौजूदा बहसों को एक नया संदर्भ देती है।
हाँ।
और साथ ही जीवित धर्म पर ध्यान देने का विचार, कि धर्म सिर्फ संस्थाओं में नहीं बल्कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनकी पसंद नापसंद, उनके संघर्षों और उनकी रचनात्मकता में बसता है। यह हमें धर्म की ज्यादा मानवीय और जमीनी तस्वीर दिखाता है।
बिल्कुल सही।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।